लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने नव वर्ष 2025 के अपने संदेश में कहा है कि हमें एक साथ मिलकर 2025 में एक नई शुरुआत को आकार देना होगा, एक विभाजित विश्व के रूप में नहीं बल्कि एकजुट देशों के रूप में। महासचिव गुटेरेस ने वर्ष 2024 की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए ध्यान दिलाया कि उम्मीद दुर्लभ रही है। अनेक युद्ध, असीम पीड़ा, कष्ट और विस्थापन फैला रहे हैं। विषमताएं और विभाजन उछाल पर हैं, जिनसे तनावों और अविश्वास को ईंधन मिल रहा है। उन्होंने जलवायु संकट के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए चेतावनी जारी की और कहा कि हमने अभी घातक गर्मी का एक दशक देखा है। रिकॉर्ड पर 10 सबसे अधिक गर्म वर्ष बीते 10 वर्षों के दौरान घटित हुए हैं, जिनमें 2024 भी शामिल है। इस पृष्ठभूमि में यूएन प्रमुख ने विनाश के इस रास्ते से हटने की पुकार लगाई। 2025 में देशों को कार्बन उत्सर्जनों में व्यापक कटौतियां करके और एक नवीनीकृत भविष्य की दिशा में बदलाव का समर्थन करके दुनिया को एक सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ना होगा। महासचिव गुटेरेस ने कहा कि सबसे स्याह के दिनों में भी उम्मीद की शक्ति के सहारे बदलावों को हासिल किया जा सकता है। यूएन प्रमुख ने कहा है कि उन्हें वित्तीय और जलवायु न्याय के लिए जद्दोजहद कर रहे विकासशील देशों, मानवता के लिए नई खोज कर रहे वैज्ञानिकों और आविष्कारों में आशा दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के अनुसार 8 दिसंबर को असद शासन के पतन के बाद से अब तक तुर्की, जॉर्डन और लेबनान समेत अन्य देशों से 1,15,000 से अधिक सीरियाई नागरिक अपने देश वापसी कर चुके हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लाल सागर में स्थित बंदरगाह और विद्युत संयंत्रों पर इसराइली हवाई हमलों पर चिंता जताई है। उन्होंने गुरुवार को जारी अपने एक वक्तव्य में इसराइल और यमन के बढ़ते टकरावों की निंदा करते हुए अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
राजधानी सना के हवाई अड्डे पर किए गए हमले में यूएन मानवतावादी विमान सेवा के चालक दल का एक सदस्य भी घायल हुआ है। हमले के दौरान यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस भी वहां मौजूद थे और विमान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हमले के बाद अपने एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए अपनी टीम के सुरक्षित होने की जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अपनी टीम के साथ यमन में मानवीय हालात का आकलन करने और वहां बंधक बनाकर रखे गए यूएन और अन्य संगठनों के कर्मचारियों की रिहाई के प्रयासों के लिए पहुंचे थे। यमन पिछले करीब एक दशक से युद्ध और मानवीय संकट की आंच में झुलस रहा है। 2014 में हूथी लड़ाकों ने देश की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। देश में करीब 1.8 करोड़ लोग मानवीय सहायता और संरक्षण सेवाओं पर निर्भर हैं। इन हमलों की पृष्ठभूमि में महासचिव गुटेरेस ने अपने वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किए जाने, आम नागरिकों और बुनियादी प्रतिष्ठानों की रक्षा करने और मानवीय सहायता कर्मियों को निशाना न बनाए जाने की पुकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफनी ट्रेम्बले बता रही थी कि महासचिव ने मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने और अधिकतम संयम बरते जाने की अपील की है। महासचिव ने सचेत किया है कि लाल सागर में स्थित बंदरगाहों और सना के हवाई अड्डे पर हमलों से मानवीय सहायता अभियान पर असर होगा। जबकि यमन में फिलहाल लाखों लोगों को जीवन रक्षक मानवीय राहत की आवश्यकता है। उधर गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अत्यधिक ठंड और शरीर का तापमान गिर जाने हाइपोथर्मिया के कारण नवजात शिशुओं और बच्चों की मौत होने की खबरों पर क्षोभ जताया है। यूनिसेफ का कहना है कि इन मौतों को टाला जा सकता था। तापमान में और गिरावट आने की आशंका है। इन हालात में गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की बमबारी जारी है। अपने घरों से विस्थापित हुए लाखों फलस्तीनी टेंट और अस्थायी आश्रय स्थलों में गुजर बसर कर रहे हैं। इस बीच यूनिसेफ और अन्य यूएन एजेंसियों ने आगाह किया है कि उनके मानवीय सहायता काफिलों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पक्टिका प्रांत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच कराए जाने और दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र व निष्पक्ष मानव अधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में मानव अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले इद्रिस खट्टक को तत्काल और बिना शर्त रिहा किए जाने की मांग की है। विशेषज्ञों ने साथ ही ये भी कहा है कि इद्रिस खट्टक को हिरासत में रखे जाने के दौरान यातना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि जातीय अल्पसंख्यकों के जबरन गायब होने और उत्पीड़न पर रिपोर्टिंग करने के लिए इद्रिस खट्टक को गिरफ्तार करके अवैध रूप में हिरासत में लिया गया है और उनके 5 साल के कारावास के दौरान उनके मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। इद्रिस खट्टक को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और 2021 में एक सैन्य अदालत में एक गुप्त मुकदमा चलाकर 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इद्रिस खट्टक के जबरन गायब होने, लंबे समय तक एकांत कारावास में रखे जाने, उन्हें यातना और दुर्व्यवहार का शिकार बनाए जाने की खबरों और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार को नकारे जाने पर इससे पहले भी चिंताएं व्यक्त की हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य अधिकारियों के स्पष्ट असहयोग के कारण इद्रिस खट्टक सजा के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि इद्रिस खट्टक को जेल में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वह उचित इलाज सुविधाओं से भी वंचित हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया भर में खाद्य सामग्री और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भूखमरी व कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत में यूएन खाद्य एजेंसी का सफर वर्ष 1963 में खाद्य सहायता व वितरण प्रयासों से शुरू हुआ, जो कि अब इन प्रणालियों को मजबूती देने पर केंद्रित तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने के पड़ाव तक पहुंचा है। साल 2024 के समापन पर वर्ष का आकलन करने के लिए यूएन न्यूज की अंशु शर्मा ने भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के संचार व मीडिया प्रमुख परविंदर सिंह के साथ बातें की।
इस वर्ष WFP ने भारत सरकार के साथ किन प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है?
इस वर्ष जो खासतौर पे जो लाभकारी चीजें हुई हैं, उनमें यह है कि 7 राज्यों में भारत सरकार जहाँ पे TTPS देता है, वहां पे करीब 7.5 लाख जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उन्होंने एक नई प्रयोग के तहत जिसमें स्वचालित अनाज वितरण समाधान और ऑटोमेटेड ग्रेन डिस्पेंसिंग सॉल्यूशन, जिसको ग्रेन ATM के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 2021 में WFP और DFPD जो खाद्य विभाग है ने मिलकर शुरू किया था, उससे करीब 3,600 मेट्रिक टन अनाज प्राप्त हुआ है।
खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों में कुपोषण से निपटने के लिए इस वर्ष क्या कुछ प्रमुख कदम उठाए WFP ने?
सरकार ने 2025 तक जो हमारे सारे फूड सेफ्टी नेट हैं, न केवल राशन वाले बट ऑल्सो जो ICDS जहाँ पे बच्चों और माताओं को खाना मिलता है वो, और टेक होम राशन जो घर पे राशन लेके जाते हैं और जिसको घर पे पकाया जाता है, वो सारी चीजों में फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा।
आगे की रणनीति क्या होगी 2025 के लिए? WFP की योजना और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?
3 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला कि भारत में जो मैलन्यूट्रिशन रिलेटेड चैलेंजेस है, सरकार के पास बहुत अच्छी नीतियां हैं, तो हम सब साथ मिलकर उस पर काम करेंगे कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम अन्य देशों की मदद करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो भारत की फूड सेफ्टी नेट है वो किस तरह से अपना काम करते रहें, रोबस्ट रहें, और उनके लिए शोध और अलग अलग तरह की जो जानकारियां प्राप्त करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं, उस पर काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो असर पड़ेगा, हर जगह असर पड़ रहा है, उसके लिए किस तरह से उन तबकों को सशक्त बनाया जा सके, और जानकारी, टेक्नोलॉजी और जो बेहतरीन तरीके हैं काम करने के जो अलग देश के, विश्व के अलग अलग हिस्सों से WFP ला सकती है, उसके ऊपर हम लोग फोकस रहेंगे।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को इटली के नेत्रहीन और दृष्टिबाधित युवा संगठन के सदस्यों ने संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संत पापा ने उन्हें जयंती वर्ष के आदर्श वाक्य का स्मरण दिलाते हुए कहा कि वे भी आशा के तीर्थयात्री बने। संत पापा ने युवाओं से कहा कि उनकी मंगल कामना है कि वे विश्वास में अनवरत आगे बढ़ते जाएं। उन्होंने कहा, तीर्थयात्री शब्द हमें पैदल चलने के बारे में चिंतन का आग्रह करता है, इसलिए मेरी मंगल कामना है कि आप हमेशा चलते रहने वाले लोग बने रहें। हर उम्र में बच्चे, युवा, वयस्क, बुजुर्ग हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा के साथ कभी न रुकते हुए चलते जाएं। संत पापा ने कहा कि तीर्थयात्री का एक लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य उसे एक पवित्र स्थल की ओर आकर्षित करता है तथा थकान के क्षणों में उसे राहत देता है। उसी प्रकार जयंती वर्ष के हम तीर्थयात्रियों का लक्ष्य है पवित्र द्वार, जो कि प्रभु येसु ख्रीस्त और उनके मुक्ति रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाते और ईश्वर एवं पड़ोसी से प्रेम करने एवं उनकी सेवा के प्रति स्वतंत्र रूप से नव जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे बिना लक्ष्य के नहीं चलें, बल्कि जीवन के तीर्थ यात्री बने। अपने मन में यीशु से साक्षात्कार की इच्छा रखें, उनके वचनों को सुनने के लिए उत्सुक रहें, जो जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यीशु के शब्द हमें आनंद, शांति, अच्छाई और कोमलता से भर देते हैं, जो अन्य कोई हमें नहीं दे सकता। वेटिकन में शुक्रवार को इटली के कतंजारो स्थित संत योहन बप्तिस्ता और इवेंजेलिस्ता को समर्पित नाइट्स ऑफ माल्टा धर्म समाज के सदस्यों ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। नाइट्स ऑफ माल्टा के सदस्यों का स्वागत करते हुए संत पापा ने कहा कि जयंती वर्ष के आरंभिक काल में उनसे मुलाकात करते वे हर्षित थे, इसलिए कि इस वर्ष को हम पुनर्मिलन और आशा के समय रूप में मना रहे हैं। 31 दिसंबर को मनाए गए मां मरियम के पर्व की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मरियम वे हैं जो रास्ता दिखाती हैं, और वह रास्ता है स्वयं यीशु, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्होंने कहा कि मरियम हमारे लिए पैदा हुए उद्धारकर्ता को अपनी बाहों में रखती हैं। यह वह प्रेम की घटना है जिसके साक्षी आप पवित्र यूखरिस्त की आराधना कर और दूसरों की सेवा को समर्पित रहकर करते हैं। अस्तु, संत पापा ने कहा कि उनका आग्रह है कि कतंजारो के नाइट्स ऑफ माल्टा के सदस्य उनके साथ मिलकर 3 क्रियाओं पर संक्षेप में विचार करें, जो हैं प्रेम करना, सेवा करना और निरंतर चलते रहना। संत पापा ने सदस्यों को आमंत्रित किया कि जयंती वर्ष के दौरान वे व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थनाओं में ध्यान लगाकर ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि प्रभु ही हमारी शक्ति हैं जो हमारे बीच भ्रातृत्व और प्रेम को बरकरार रखते तथा उसे पोषित होने देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन से हमारा पोषण करने वाले तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा समर्थन करने वाले प्रभु येसु ख्रिस्त से ही सारे वरदान, करिश्मे और भले फल आते हैं जो कलीसिया को फलदायी और आनंदमय बनाते हैं। दूसरी क्रिया संत पापा ने कहा सेवा करना है। जब जब आप निर्धनों की मदद करते, जब जब बीमारों की भेंट करते, तब तब आप प्रभु येसु की सेवा करते हैं और इस प्रकार ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और भाइयों के प्रति समर्पण की गवाही रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन जाती है। तीसरी क्रिया संत पापा ने कहा कि चलते रहने की है, जो हमें याद दिलाती है कि येसु हमारा मार्ग है जिस पर हमें हमारी सांसारिक तीर्थ यात्रा के दौरान विश्वास की मशाल जलाए रखते हुए दृढ़तापूर्वक चलकर उनका अनुसरण करना है। संत पापा फ्रांसिस ने जनवरी 2025 के लिए निर्धारित प्रार्थना मनोरथ में सभी को शिक्षा के अधिकार मिलने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। अपने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से प्रसारित वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस चेतावनी देते हैं कि आज हम एक शैक्षिक आपदा का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बल देते हुए उन्होंने कहा यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध, आप्रवास और गरीबी के कारण लगभग 25 करोड़ किशोर और किशोरियों में शिक्षा का अभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा सभी बच्चों, युवाओं को स्कूल जाने का अधिकार है, भले ही उनकी आवजन और आप्रवास स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर किसी के लिए एक आशा है। इसके अलावा यह प्रवासियों और शरणार्थियों को भेदभाव, आपराधिक नेटवर्क और शोषण से बचा सकती है। इस बात पर संत पापा ने गहन दुख व्यक्त किया कि इतने सारे नाबालिगों का शोषण किया जाता है। अस्तु उन्होंने कहा शिक्षा आवश्यक है जो आप्रवासियों को मेजबानी करने वाले समुदायों में एकीकृत होने में मदद कर सकती है। इस तथ्य पर संत पापा ने बल दिया कि शिक्षा बेहतर भविष्य के द्वार खोलती है। इस प्रकार आप्रवासी और शरणार्थी अपने नए देश में अथवा वापस लौटने पर अपने अपने समाजों में मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। याद रखें कि जो कोई भी आगंतुक का स्वागत करता है वह स्वयं अपने घर में येसु ख्रीस्त का स्वागत करता है। न्यू ऑर्लिंस के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष ग्रेगरी आयमंड को प्रेषित एक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने अमेरिका के इस शहर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की। संत पापा ने कहा कि वे न्यू ऑर्लिंस में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के कारण हुई जान माल की हानि के बारे में जानकर बहुत दुखी हैं। गौरतलब है कि पहली जनवरी को 15 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे जब एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने तेज गति से एक पिकअप ट्रक को भीड़ पर चला दिया था। न्यू ऑर्लिंस के महाधर्माध्यक्ष आयमंड को भेजे अपने टेलीग्राम संदेश में संत पापा ने संपूर्ण शहर को अपने आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया और पीड़ितों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया की सांत्वना प्रदान की। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में कहा गया कि संत पापा प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु में शांति और शक्ति की प्रतिज्ञा रूप में वे अपना आशीर्वाद भेजते हैं। इसी बीच महाधर्माध्यक्ष आयमंड ने कहा कि वे हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना को उन्होंने मानव जीवन के लिए घोर अनादर का संकेत बताया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।